प्रासाद शिखरारूढ़ाः प्रासाद शिखरारूढ़ाः कुरु नार्यो दिदृक्षया कुरु नार्यो दिदृक्षया बभृशुः कुसुमै कृष्णम् वृषुः कुसुमैः कृष्णम् प्रेमव्रीडास्मितेक्षणाः प्रेमव्रीडास्मितेक्षणाः प्रासादशिखरारूढाः कुरु नार्यो दिदृक्षया वृषुः कुसुमैः कृष्णम् प्रेमव्रीडास्मितेक्षणाः प्रासादशिखरारूढाः कुरु नार्यो दिदृक्षया वृषुः कुसुमैः कृष्णम् प्रेमव्रीडास्मितेक्षणाः प्रासाद राजमहल की शिखर छत पर आरूढ़ाः चढ़ी हुई कुरु नार्योः कुरुवंश की नारियां दिदृक्षया देखने की इच्छा से वृषुः वर्षा की कुसुमई ही फूलों से कृष्णम कृष्ण पर प्रेम प्रेम तथा स्नेहवश व्रीडास्मिते क्षणाः लजीली हंसी से देखते हुए अनुवाद भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। हंसने से ज्यादा मुस्कुराना हंसना मतलब ठहाका मार मुस्कुरा रही थी स्माइलिंग स्मिता स्मिता मतलब जहां दांत दिखता नहीं है। हमारे एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उनका नाम है स्मित कृष्ण महाराज तो उन्होंने बताया कि स्मित कृष्ण का क्या मतलब क्या है अलग अलग प्रकार के हंसी हो भक्ति रसामृत संत में वर्णन है जब थोड़ा मुस्कुराते स्मित मतलब दांत दिखना नहीं चाहिए थोड़ा ऐसे मुस्कुरा दांत दिखा तो उसका दूसरा नाम अभी जैसे प्रभु जी हंस रहे हैं दांत दिखा थोड़ा ये जो हंसी है जब दांत दिखता है तो वो थोड़ा ज्यादा और उसे मतलब थोड़ा ठहाका मारकर हाँ हंस रहे और जब ये सब पूरा शरीर हिलने लगता है तो उसको दूसरा ऐसा पांच प्रकार के हंसने का बताया गया भक्ति रसामृत सिंधु तो अलग अलग तरीके से ये भी एक विज्ञान है। इतना वैदिक संस्कृति इतना एकदम रिफाइंड है कि हर एक चीज के लिए हर एक भावना के लिए हर एक चीज एक विज्ञान है कैसा हंसना है कब हंसना है कितना हंसना है। अगर एक जगह ज्यादा हंस दे तो बोलेंगे ठीक नहीं है उनका गलत समझ सकते हैं लोग मुस्कुराया तो बहुत अच्छा चाहते हैं अपने कृष्ण हरीशौरी श्रुतकीर्ति प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद जी किसी को अगर देखे और मुस्कुरा दिए तो उनको लगता था बस हमारा जीवन सफल। उस समय क्या साल में या दो साल में एक बार आते थे प्रभु और जीवन में कभी एक बार देखने को मिलता था और वो अगर उनकी ओर दृष्टिपात कर दे तो हमारा जीवन सफल, शुद्ध भक्त देख लिया हमने। तो प्रभुपाद जी हर एक व्यक्ति को ऐसा देखते थे मानो एकदम आर पार, तो इस तरह से बता रहे थे। इसमें कितना मतलब किसी को देखना मुस्कुराना मतलब एक्नॉलेजिंग समवन्स प्रेजेंस, तो मुस्कुराना स्मित इक्षणा, इक्षणा मतलब देखना, स्मित मतलब मुस्कुरा और व्रीड मतलब लज्जा के साथ। तो इसका तात्पर्य बहुत ही सुंदर है। इसमें एक चीज भागवत के अध्ययन में जब ध्यान पूर्वक हम लोग पढ़ना और अध्ययन करने में अंतर है। पढ़ने का मतलब है प्रभुपाद जी, एक मैं प्रभुपाद मेमोरीज में मैं पढ़ रहा था, एक भक्त को कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टडिंग। रीडिंग एंड स्टडिंग का पढ़ने और अध्ययन करने में अंतर क्या है? पढ़ने का मतलब है सिर्फ पढ़ लिया, और बोले अध्ययन करने का मतलब है हर एक संस्कृत श्लोक का, हर एक संस्कृत शब्द का आपको मतलब मालूम होना चाहिए। इसका मतलब आपने ध्यान पूर्वक गहराई से अध्ययन किया, नहीं तो फिर प्रभुपाद जी ने इतना तकलीफ क्यों उठाया कि हर एक शब्द का अनुवाद लिखने के लिए, हर एक शब्द का मतलब लिखने के लिए? क्या ऐसे मतलब कुछ टाइम पास करना था कि बुक पुस्तक बड़ा करना था? नहीं, ताकि व्यासदेव या सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली हुई ये शब्द जो हैं, एक एक शब्द में भगवान श्री कृष्ण है, भागवत भगवान से अभिन्न है, एक एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण है, एक एक शब्द में भगवान श्री कृष्ण है। तो इसको जितना गहराई में जाएंगे उतना आस्वादन करेंगे, और ये एक पहला चीज। और दूसरा चीज, प्रभुपाद जी एक श्लोक में से कभी कभी उसको लेकर उस समय की संस्कृति क्या थी, वैदिक संस्कृति क्या थी, वो भी समझाते हैं। सिर्फ भक्ति 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 ये तो है ही, पूरा भगवत में भक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं, पर साथ साथ में जब भी मौका मिलता है प्रभुपाद जी इस भक्ति को अगर उतारना है अपने जीवन में, एक ऐसा व्यवहार होना चाहिए समाज में, ऐसी संस्कृति होनी चाहिए, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का मतलब क्या? जिस संस्कृति में, जिस समाज में कोई आ जाए तो स्वाभाविक रूप से वो भक्ति बन जाए, भक्त बन जाएगा। इसको कहते हैं वैदिक संस्कृति। जैसा आजकल की संस्कृति में, संस्कृति है ही नहीं वैसा, पर आजकल की दुनिया में किसी का जन्मदिवस, जन्मदिवस मतलब क्या? वो व्यक्ति जो है वो प्रमुख बन जाता है। फलाना फिल्म स्टार का बर्थडे, फलाना पॉलिटिशियन का बर्थडे, उसका फोटो आएगी तो वो केंद्र है, सब लोग आते हैं उसका गुणगान करते। पर वैदिक संस्कृति में जन्मदिन का मतलब है उस दिन सबसे पहले जल्दी उठ के स्नान करके भगवान का दर्शन करने जाओ, भगवान को आरती करो और कुछ दान दो लोगों को। वैदिक संस्कृति का एक उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना कोई भी कार्यों में, और ब्लेसिंग्स को आशीर्वाद प्राप्त करना, जितना हो सके उतना आशीर्वाद प्राप्त करना। जैसे कल का एक उदाहरण, घोसरवाड़ में सुंदर प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम के दौरान क्या था बेसिकली, ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों को बुलाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना, हरिनाम करना, जिससे भगवान प्रसन्न हो और सारे वैष्णवों की कृपा, उनकी आशीर्वाद, उनकी प्रार्थना मिले। बस दैट इज द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। जितने ज्यादा वैष्णव आए, जितने ज्यादा भक्त एकत्रित हुए, जितने ज्यादा लोग आए, जितना अच्छा हरिनाम हुआ और जितना कृपा प्रार्थना भक्तों का मिला, दैट इज द सक्सेस। और उसके लिए जो जरूरत है वो करना। अगर भक्त को बुला रहे हैं तो उनको अच्छे से कंफर्टेबली सब ठीक ठाक है, बस दिस इज द रियल सक्सेस। कितना आशीर्वाद मिला, कितना भगवान का कृपा मिला। तो यहां इस श्लोक में खास करके प्रभुपाद एक शब्द पर ज्यादा दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, प्रेम व्रीड़ा स्मिते क्षणा। प्रासाद, प्रासाद मतलब बड़े बड़े राजमहल, प्रासाद शिखर आरूढ़, आरूढ़ होकर मतलब प्रासाद बड़े बड़े महलों की जो बालकनी है झरोखे जैसा होते हैं। आप जयपुर में जाएंगे तो वहां हवा महल झरोखे। रानियां कभी सड़क में जो पब्लिक जाती है उनके साथ घूमती नहीं थी ऐसी स्त्रियां, कुल स्त्रियां। आजकल के गणेश पूजा में हम लोग गणेश चतुर्थी में बंबई में हम देखते हैं वहां लोग किस उद्देश्य से आते हैं गणपति पूजा, गणपति को देखने कोई आते ही नहीं सबसे पहले। वहां आते हैं किसी और चीज और कुछ करने और किसी चीज को देखने। तो जो कुल स्त्रियां हैं ऐसे ऐसे जगह में जाती ही नहीं सबसे पहले। वो लोग ऊपर चढ़कर वहां से कुरुन आर्या प्रसाद शिखर आरूढ़ा कुरुन आर्यो दिदृक्षया, भगवान को देखने की इच्छा से भगवान चले जा रहे हैं और हजारों संख्या में लोग आके खड़े हुए हैं, साधारण लोग जनसाधारण लोग भी खड़े हुए। तो जो कुल स्त्रियां हैं वो जगह में नहीं आएंगी। तो प्रसाद शिखर आरूढ़ा कुरुन आर्या दिदृक्षया, देखने की इच्छा से, भगवान को देखने की इच्छा से, भगवान को विदा करने की इच्छा से। वृषु कुसुमयी कृष्णम, वृषु पुष्प से लेकर कुसुमम कुसुमयी ही वृषु, वृषु मतलब वर्षा कर रहे थे। जैसे हम लोग पुणे यात्रा में जाते थे सबसे पहले बहुत सारी फॉरेन की माताएं आई थी, भक्त लोग भी आए थे, तो वो लक्ष्मी नारायण मंदिर से हम लोग हरिनाम करके जब निकले तो चारों ओर सब छोटी छोटी गली है और बड़े बड़े मकान है, तो पहले माले पे दूसरे माले पे ये सारी स्त्रियां बहुत सारे लोग फूल लिए थे, फूल के पंखुड़ियों को लेके ऐसा फेंक रहे थे। तो बहुत सारे हमारे फॉरेन की जो आता है वो कह रही थी बाप रे ये तो ऐसा लगता है हम लोग द्वारका में वैकुंठ में, ऐसा कभी हमको स्वागत नहीं किया गया। कल भी गोसरवण में जब भगवान का ये रथ शुरू हुआ तो एक व्यक्ति खड़े थे ऊपर, वो इधर उधर देख रहे थे, उनको भक्त ने बोला चलो जल्दी करो। तो प्रासाद वृषु कुसुमयी ही कृष्णम प्रेम व्रीड़ा स्मिते क्षणाः, प्रेम प्रेम के साथ स्नेह के साथ, प्रेम व्रीड़ा व्रीड़ा मतलब लज्जा के साथ, प्रेम लज्जा और मुस्कुराते हुए। प्रभुपाद इसको तात्पर्य रूप में क्या लिखते हैं, और स्नेह तथा लज्जा से युक्त मुस्कुराती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। प्रेम और लज्जा के साथ पुष्प वर्षा करने लगी। तो प्रभुपाद जी जब भी ऐसा एक मौका मिलता है तो संस्कृति क्या थी वो बताते हैं, और संस्कृति के बिना बड़े पैमाने पे लोगों को भक्ति में लाना नामुमकिन। जब तक अनुकूल वातावरण नहीं बने, कोई एक विरला कोई एक ऐसा भक्त पाश्चात्य देश में हिप्पियों के साथ रहकर भक्त कर सकता है, प्रभुपाद जैसे आदमी ऐसा जगह में जाकर भी भक्ति कर सकते हैं, पर हम जैसे लोग अगर भक्तों का संग नहीं है, अनुकूल वातावरण नहीं है, लोगों को कृष्ण भावना में कैसा रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है सिखाया नहीं जाएगा, वैष्णव एटिकेट सिखाया नहीं जाएगा, तो कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाएंगे। कोई ब्रह्मचारी बनने आएगा चार दिन में चला जाएगा अगर उसको सिखाया नहीं जाता कि ब्रह्मचारी का मतलब है पैसा नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, स्त्रियों के साथ ऐसे खुले बोल के बातचीत नहीं करना चाहिए, ये तो फिर ब्रह्मचारी मत रहो। तो ऐसे गृहस्थ, गृहस्थ मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सन्यासी का लक्षण, सन्यासी को संरक्षण। अभी उड़पी में जाएंगे तो सन्यासी सब जाते तो लोग हटो हटो हटो, वो आल्टर में जैसा लड़का ऐसे उसको संरक्षण करके रखते, जिम्मेदारी है वो। तो इस तरह से अगर लोगों को नहीं मालूम ये संस्कृति क्या है तो फिर बड़े पैमाने पे प्रचार नहीं हो पाएगा। इसीलिए संस्था की जरूरी है, नहीं तो संस्था की जरूरत नहीं है। जो कृष्ण भावना हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में कर सकते, संस्था की जरूरत है एक साथ आकर एक दूसरे को प्रोत्साहन दे सकते। तो प्रभुपाद जी जब भी अनुकूल तात्पर्य में तुरंत वैदिक पॉइंट बताते हैं, उस समय की संस्कृति क्या थी और वो संस्कृति को कैसे उतारना है। प्रभुपाद वॉज ए कल्चरल एम्बेसडर, ही वॉज नॉट सिंपली ए प्रीचर, कोई जस्ट भक्ति करो हरे कृष्ण जप करो, नहीं, उन्होंने पूरा संस्कृति ले गए, भारत वैदिक संस्कृति को आरोपण किया उधर। नहीं तो इससे पहले हजारों लोग गए भगवद गीता को बोले, लोग आर्मचेयर में बैठ के थोड़ा पढ़ गए बस, पर जब प्रभुपाद जी गए और उनको सिखाए, न केवल उनको हरे कृष्ण जपना सिखाया, उनको कैसे खाना सिखाया, कैसे कपड़ा पहनना सिखाया, कैसे रहना सिखाया, कैसे साथ व्यवहार करना, सब कुछ सिखाया, पूरा वैदिक पैकेज दे दिए। सिर्फ वो हरे कृष्ण नहीं जपाए पर पूरा पैकेज। इसीलिए हम देखते हैं कि ये पाश्चात्य देश के लोग जब आते हैं, हमको सीखने को मिलता है, बाप रे ऐसा करना चाहिए, मल विसर्जन करने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, उसके बाद ऐसा करना चाहिए, ऐसा वस्त्र को ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, पूरा संस्कृति दिया। और तात्पर्य में भी जब भी ऐसा अनुकूल ये मिलता है तो वो तुरंत बहुत अच्छे तरह से समझाते हैं। प्रभुपाद यहां लज्जा के ऊपर थीसिस लिख दिए, पूरा पीएचडी थीसिस, कि वहां उस समय की नारी क्यों छत के ऊपर चढ़ गई, क्या बचपना था क्या छत के ऊपर चढ़ के देखना, और क्यों प्रेम स्मित क्षणाह, और क्यों कुसुमय अवृषभ कृष्ण, तो समझाते हैं लज्जा स्त्रियों का अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है, इससे वे पुरुषों द्वारा सम्मानित होती हैं। सही सम्मान पुरुष स्त्रियों को तब देते हैं जिस स्त्रियों में लज्जा है। जैसा हरेक का भूषण होता है, ब्राह्मण का भूषण है उसकी शुद्धता, ब्राह्मण जितना शुद्ध होगा उतना उसका क्या बोलते हैं सम्मान देंगे लोग, क्षत्रिय जितना शूर होगा उतना सम्मान देंगे, जितना दानी होगा, क्षत्रिय जितना शूर होगा, वैश्य जितना दानी होगा उतना गुणगान, और शूद्र जितना नम्र होगा उतना उसको सम्मान मिलेगा। ये उनका भूषण है, ये उनका आभूषण है। इसी तरह से प्रेम व्रीडा, व्रीडा के ऊपर ये पूरा तात्पर्य, व्रीडा यानी लज्जा, प्रेम व्रीडा स्मृति क्षण, तो लज्जा स्त्रियों का अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है, इससे वे पुरुषों द्वारा सम्मानित होती हैं। महाभारत काल में अर्थात 5000 वर्ष से अधिक वर्ष पूर्व भी यह प्रथा थी। क्यों प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, क्योंकि जो लोग विश्व इतिहास से परिचित नहीं हैं, ऐसे अल्पज्ञ ही कहते हैं कि पुरुषों से स्त्रियों को पृथक रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों के आगमन में चालू हुई। महाभारत के घटना से निश्चित रूप से सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी, ये पर्दा सिस्टम जो है, मनुष्य से बहुत कम मिलती थी, और वे सब नीचे न आकर जहां कृष्ण थे राजमहल की छत पर चढ़ गई और वहीं से कृष्ण के प्रति सम्मान जताने के लिए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तो कुछ लोगों का इतिहास में कहना है कि मुगल लोग जब से आए तब से ये पर्दा सिस्टम, पर्दा मतलब क्या, सिर्फ पर्दा लगाना नहीं, पर्दा मतलब रेस्ट्रिक्टेड एसोसिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, रेस्ट्रिक्टेड, जितना जरूरी है उतना, उससे ज्यादा नहीं। ये सिस्टम पहले से था, ये कोई नई बात नहीं है, महाभारत की वैदिक संस्कृति शुरू से चली आ रही, सृष्टि की शुरुआत से, ये कोई नई बात नहीं है। जो मूर्ख लोग हैं, अल्पज्ञ हैं, जिनको नहीं मालूम, वो कहते कि मुसलमानों ने आया और अलग कर दिया पर्दा सिस्टम। ये पर्दा सिस्टम का मतलब है रेस्ट्रिक्टेड एसोसिएशन, जितना जरूरी है उतना बस, उससे ज्यादा नहीं। तो ये घटना देखिए, प्रभुपाद कितने लॉजिकली प्रेजेंट करते। देखो महाभारत में लिखा गया है कि ये स्त्रियां ऊपर चढ़ती थी, ऐसे फ्री मिक्सिंग नहीं था, प्रीमिक्सिंग मतलब ऐसा है मिलना जुलना। दुर्भाग्यवश आज कॉलेज में हम देखते हैं, स्कूल्स में देखते हैं, हमारे जो हमारा मंदिर था उसके नीचे एक स्कूल था, वो स्कूल पब्लिक का एक ऐसे स्कूल था, उस स्कूल में दसवीं का कक्षा जब खत्म होने आया तो एक प्रोग्राम रखा, क्लास सोशल, दसवीं अभी छोड़ के सब लोग चले जा रहे हैं ना कॉलेज में, सेंड ऑफ पार्टी। तो उसमें हमारा ब्रह्मचार्य आश्रम उसके बगल में था, उसमें क्या एक ही बिल्डिंग में सब था, और एक छोटा सा ऐसा ऐसा जगह में था, वो गुफा जैसा था, उसमें से हवा जाने के लिए एक फैन रखा गया था, एग्जॉस्ट हमारे ऊपर, सब एग्जॉस्ट वहां का एग्जॉस्ट हमारे ऊपर आता। तो हमें ऐसी वहां ऐसा देखा, मैं तो देख रहा था, तो मैं देखा इनका प्रोग्राम चल रहा है और टीचर्स एक टेप रिकॉर्डर लाके ऐसा वेस्टर्न म्यूजिक जोर से लगा के, लड़कों इधर बैठे हुए बेचारे, लड़कियां इधर बैठी हुई, दोनों को बोल रहे आके नाचो, चलो साथ में आके नाचो तुम लोग। वो लड़के लोग शर्मा रहे, बोले चलो, दो लड़के लोग निकल ही गए, बोले हमको नहीं करना है, बस जबरदस्ती खींच के दोनों को नचा रही है। मैं बोला ये कब का, ये कब की बात, मतलब 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है, तो एक एक साल में भी 4-2.5 जाएगा नीचे, आप समझ सकते क्या होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा लोगों को नहीं मालूम, और ये शिक्षक है, दे आर द टीचर्स, दे आर द ट्रेंड सेटर्स। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये लज्जा जो है स्त्री का आभूषण है। और फिर प्रभुपाद न केवल वो बताते हैं पर उसको समझाते हैं क्यों, कहते हैं यहां यह भी कहा गया है कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी, हाँ यहां ठीक है, मुस्कुरा भर रही थी। यह लज्जा स्त्रियों को प्रकृति का वरदान है, एक्चुअली प्रकृति का वरदान है कि स्त्रियों को वो लज्जा दी गई है, इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। दो चीज, जितना स्त्रियों में लज्जा है उतना उनकी सुंदरता बढ़ती है। वैदिक संस्कृति में सुंदरता कैसा चेहरा है उसे नहीं, लज्जा है कितना है उसके ऊपर उसकी सुंदरता। उसकी सुंदरता यह थी कि लज्जा जो है वही आभूषण है उसका, आभूषण मतलब आभूषण क्यों पहनते, सुंदरता बढ़ने के लिए। तो लज्जा जो है वो स्त्रियों की सुंदरता है, और दूसरी चीज है प्रतिष्ठा मतलब सम्मान। सुंदरता और सम्मान वैदिक संस्कृति में उनको दिया जाता था जिनके जो लज्जा से आभूषित हो, उनकी सुंदरता बढ़ती थी और उनकी उनका सम्मान बढ़ता था। भले ही वे उच्च कुल की ना हो या कम सुंदर हो, भले ही वो उच्च कुल की ना हो, एकदम नीच कुल की भी क्यों ना हो, भले ही वो देखने में सुंदर क्यों ना हो, पर उसकी सुंदरता और उसका सम्मान बढ़ता था अगर लज्जा हो। हमें इसका निजी अनुभव है, प्रभुपाद अपने निजी अनुभव से लिख रहे हैं। एक मेहतरानी, मेहतरानी मतलब झाड़ू मारने वाली, एक मेहतरानी स्त्रियोचित लज्जा के कारण अनेक भद्र पुरुषों से श्रद्धा भाजन बनी हुई थी। प्रभुपाद लिखते हैं एक बार उनके मित्रों के साथ वो एक सड़क पर खड़े थे, फुटपाथ पर, और एक स्त्री जो झाड़ू मारने वाली स्त्री आई पूरा ढकी हुई, और ऐसा नहीं कि सब खड़े हैं तो उनके बीच में सहसा या उधर मार के चले गए, चुपचाप पीछे खड़ी रही बस। सिर्फ उसके खड़े होने से वहां उसमें इतना शक्ति था कि इन लोगों को हटना पड़ा। ये शक्ति देखिए, विदाउट स्पीकिंग ए वर्ड, सिर्फ सर झुका के उस तरफ खड़ी हो गई, इन लोगों को हटना पड़ा, बोलना भी नहीं पड़ा, हटो या फिर झाड़ू बीच में सब जा सकती थी। इसको एक्चुअली अंग्रेजी में आई कैन रिलिश इट मच मोर, बहुत सुंदर तात्पर्य, हिंदी में कुछ मेरे को पता नहीं, उतना जानता नहीं, पर तात्पर्य अंग्रेजी के एक एक शब्द प्रभुपाद के डायरेक्टली क्या हुआ, थोड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा, मतलब इतना रस है उस शब्दों में, हिंदी में भी है भले, पर मुझे थोड़ा उस रस का आस्वादन करके आदत है। फिर हिंदी भी पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। या देखिए, दिस शाइनेस इज ए गिफ्ट ऑफ नेचर टू द फेयर सेक्स एंड इज एनहेंसेस देयर ब्यूटी एंड प्रेस्टीज इवन इफ दे आर ऑफ ए लेस इंपॉर्टेंट फैमिली और इवन इफ दे आर लेस अट्रैक्टिव। वी हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ दिस फैक्ट। ए स्वीपर वुमन कमांडेड द रेस्पेक्ट ऑफ मेनी रेस्पेक्टेबल जेंटलमैन सिंपली बाय मैनिफेस्टिंग ए लेडीज शाइनेस। वो लज्जा प्रकट करके उनका सम्मान, शी कमांडेड द रेस्पेक्ट ऑफ रेस्पेक्टेबल जेंटलमैन। हाँ, रेस्पेक्टेबल भले सज्जन लोग खड़े हैं, पुरुष लोग, पर एक झाड़ू मारने वाली स्त्री ने लज्जा से इनका जो सम्मान है कमाया। फिर लिखते हैं, हाफ नेकेड लेडीज इन द स्ट्रीट डू नॉट कमांड एनी रेस्पेक्ट बट ए शाई स्वीपर्स वाइफ कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल। हाफ नेकेड लेडीज, रूपा ने देखा पाश्चात्य देश में, इसका भी अनुभव किया है। उनको लगता है जितना कम कपड़ा पहनेंगे उतना अपना सुंदरता प्रदर्शन करेंगे और लोग सम्मान देंगे। कैसे लोग सम्मान देंगे और उनका उद्देश्य क्या है सम्मान का? भोग करने की वृत्ति से थोड़ा गुणगान करेंगे बस। दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट। जितना कम कपड़ा पहनो उतनी सुंदरता आजकल की, दिस इज द जितना फिल्म स्टार को देखिए, जितना से जितना प्रदर्शन करेंगे अपने शरीर को उतना उनकी सुंदरता महान मानी जाती है। पर कौन सुंदरता, कौन देखने वाला उनकी सुंदरता, इसमें से बूझे क्या मिलेगा? बस अपने इंद्रियों को तृप्त, अपने काम को भड़काने के लिए चाहिए बस। और बाहरी रूप से गुणगान करेंगे पर उसके बारे में कैसा बातचीत करेंगे? वेश्या के समान है, एक्चुअली वेश्या ही और कुछ नहीं, एक्चुअली वेश्या है। फिर देखिए, न केवल एक एक शब्द के तात्पर्य को समझा के वैदिक पैकेजिंग देते, वैदिक संस्कृति नहीं जानेंगे तो अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप कहेंगे वैदिक संस्कृति का बैकग्राउंड देना क्या जरूरी है? क्या सिर्फ कृष्ण भावना, जस्ट हरे कृष्ण जपो? मूर्ख लोग कहते हैं जो पढ़ाई नहीं की है प्रभुपाद जी के पुस्तक को, कहते कि कुछ उसने वही चीज कहते हैं, शरीर नहीं हो आत्मा हो, शरीर नहीं हो आत्मा हो, हरे कृष्ण जपो। कौन कहा? ध्यान से गहराई में जाके देखो, बहुत सारे चीज है इसके अंदर, एक एक वाक्यों में है। और जब तक इन चीजों को गहराई में अध्ययन करके उतारते नहीं हमारे समाज में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस होल सोसाइटी। क्योंकि कृष्ण भावना क्या है? कृष्ण भावना उदाहरण के लिए पानी, अगर पानी पीना चाहिए तो ग्लास चाहिए ना आपको, ग्लास के बिना पानी कैसे पिएंगे आप? बोलेंगे नहीं, हम पानी ऐसे पिएंगे, पर ज्यादा देर तक नहीं रख सकते पानी हाथ में। पर ग्लास होगा तो ग्लास में भर के रख सकते हैं, पूरा रात भर रख के सुबह पी सकते हैं। ग्लास अपने आप में मूल्य नहीं है, ग्लास का कुछ वैल्यू नहीं है बिना पानी के। रेगिस्तान में इतने ग्लास रखे हो, क्या करोगे आप, चाटोगे ग्लास को? ग्लास का महत्व इसलिए है क्योंकि पानी को हम पकड़ रख सकते हैं। बॉटल चाहिए, बॉटल के बिना कैसा पानी पिएंगे हम लोग? पानी बांटना भी है तो कैसे बांटोगे? धोती में लेके जाओगे, हाथ में लेके जाओगे, वहां पहुंचने तक सब गिर जाएगा। तो अगर पानी को रखना है तो ग्लास की जरूरी है, अपने आप में ग्लास या बोतल का कोई मूल्य नहीं है। इसी तरह से यह सारा संस्कृति का उद्देश्य है कृष्ण भावना भावित होना, अगर कृष्ण भावना नहीं है तो ये सारा वर्णाश्रम और वैदिक शर्म आसुरिक वर्णाश्रम है, सिर्फ अहंकार बढ़ाएगा, मैं ब्राह्मण हूं ये तुच्छ है ये शूद्र है। पर भक्ति जहां हो तो फिर जितना सारा वैदिक संस्कृति को उतारेंगे उतना उसका आभूषण बढ़ेगा, उस उतने अच्छे से हम लोग इस पानी को बांट सकते हैं, बांटने में अनुकूल होगा। इसीलिए इस संस्कृति को अपनाना जरूरी है, इट इज लाइक ए कंटेनर। तो भक्ति को हमेशा के लिए बढ़ा के रख सकते हैं। अगर लोगों को सिखाए नहीं जाते, ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारी कैसा रहना है सिखाना नहीं गया, गृहस्थों को गृहस्थ का मतलब क्या है नहीं सिखाया गया, सन्यासियों को सन्यासी क्या है नहीं सिखाया गया, और सब लोग भक्ति कर रहे हैं, तो धीरे 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 सब फॉल डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पैकेजिंग नहीं है। अगर हाथ में पानी रखोगे कितना देर रखोगे, धीरे धीरे सब फिसल के चला जाएगा। पर वही ग्लास में रखोगे बॉटल में रखोगे तो रखेगा और बांट भी सकते हैं। तो कृष्ण भावना अगर बड़े पैमाने पर प्रचार करना है तो ये सूक्ष्म रूप से जो संस्कृति है वैदिक संस्कृति को कल्चर, इसको अपनाना जरूरी है ताकि हमारे हृदय में कृष्ण भावना को बनाए रखे और जितना हो सके बांटे। तो प्रभुपाद जी न केवल ये बताते हैं पर इस लज्जा का फिलॉसफी क्या है, आधार क्या है बताते हैं। कहते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन एज कंसीव्ड बाय द सेजेस ऑफ इंडिया इज टू हेल्प वन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ इल्यूजन। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि माया से बाहर निकलो और कृष्ण भावना भावित हो जाओ, बस यही उद्देश्य है और कुछ नहीं। यही तो हमारा फिलॉसफी है, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए हर एक जीव। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कृष्ण भावना भावित होना, और कृष्ण भावना भावित होना है तो माया से बचना है। और माया का स्वरूप क्या है, माया का प्रत्यक्ष स्वरूप, द मेटीरियल ब्यूटी ऑफ ए वुमन इज एन इल्यूजन बिकॉज एक्चुअली द बॉडी इज मेड ऑफ अर्थ वॉटर फायर एयर ईथर, बट बिकॉज देर इज एसोसिएशन ऑफ द लिविंग स्पार्क विथ मैटर इट अपियर्स टू बी ब्यूटिफुल। आजकल की दुनिया में गलत चीजों को महत्व दिया जा रहा है, शारीरिक सुंदरता को महत्व दिया जा रहा है, सुंदर माना जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, इसीलिए लोग पागल हैं अपने आप को सजा के अच्छा सा प्रस्तुत करने के लिए। और वैदिक संस्कृति जो है उस सुंदरता को उतना ज्यादा महत्व नहीं देती, क्योंकि वो जानती है क्या, जो जानता है कि थैली है बस, चाहे प्लास्टिक थैली हो या थैली हो, थैली थैली तो है वो, उसको उतना महत्व नहीं देती क्योंकि माया है वो। आत्मा है इसीलिए तो वो सुंदरता है, अगर वो आत्मा मिस यूनिवर्स का आत्मा निकल जाए तो क्या कोई उसको जाके गले लगाएगा? वो आत्मा है, ममई वांशो, इसलिए तो सुंदर है आत्मा के बिना। पर माया में पड़ने के कारण पैकेजिंग को ज्यादा महत्व दे रहा है और सब्सटेंस को छोड़ दिया, इसका मतलब माया में पड़ गया, पूरा समाज माया में है। और यहां समझा रहे हैं, No one is attracted by an earthen doll, even if it is the most perfectly prepared to attract the attention of others. शोरूम में, साड़ियों के शोरूम में स्त्रियां खड़ी रहती हैं, पुतले, उसको देख के कितने लोग पा जाके खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, मान लो पत्थर की मूर्ति है और क्या है। Of course, मन उनका चलता रहता है, इमेजिन करते हैं शायद वो ऐसी खड़ी होगी तो कितना अच्छा, वो दूसरी बात है, पर उससे आकर्षित नहीं होते। क्यों? क्योंकि मालूम है उसकी कुछ आत्मा है ही नहीं, मरा हुआ पुतला है। द डेड बॉडी हैज नो ब्यूटी बिकॉज नो वन विल एक्सेप्ट द डेड बॉडी ऑफ ए सो कॉल्ड ब्यूटीफुल वुमन। ओ लिक्विड ब्यूटी, प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, राजा था एक, राजकुमार था, एक औरत से प्रेम करने लगा, औरत बोली मैं तो बहुत सुंदर हो, अच्छा तुमसे शादी करना, ठीक है चार दिन के एक हफ्ते के बाद आना, दोनों शादी करेंगे, तेरे को इससे है ना, इससे इसी से तो आकर्षित होकर तू शादी करना चाहता है, ठीक है एक हफ्ते के बाद आ जाना। और एक हफ्ते में उसने इतना परगेटिव ले लिया, इतना मतलब अरंड ऑयल क्या है वो, कैस्टर ऑयल, हाँ उल्टी करने लगी और उसके साथ जुलाव इत्यादि के पूर्ण मतलब ऐसे उसकी माँ जैसे लगने लगी। और वो आया, दरवाजा खटखटाया, तो उसने दरवाजा खोला, बोले आपकी सुपुत्री किधर है? बोले सुपुत्री किसकी सुपुत्री, मैं ही तो वो सुपुत्री हूं। बोले हाँ, नहीं 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 नहीं, आप हम विश्वास नहीं कर सकते। बोले हाँ, सिर्फ सुंदरता को साइड में निकाल के रखी। अच्छा, कहाँ है वो? वो सारे वो सात बर्तन पड़े हुए ना, उसमें जाके देख। बोले क्या, सुंदरता को बर्तन में डाल के रखा? हाँ, देखो जाओ। घृणात्मक रूप से, तो ये जिसके पीछे तुम पड़े हुए थे ना, वो मैं नहीं थी, वो उसके पीछे तुम पड़े हुए थे, वो देखो उधर है उसके। बड़े मतलब स्टार्क नेकेड ट्रूथ, सुनने को थोड़ा हजम करने को तकलीफ होता है, पर ये सत्य है, पर ये सत्य है। बट हाँ, therefore the conclusion is that the spirit spark is beautiful, आत्मा सुंदर है, and because of soul's beauty one is attracted by the beauty of the outward body, आत्मा सुंदर है इसीलिए लोग आकर्षित हो रहे हैं उससे, आत्मा के लक्षण है, उस लक्षण से, उस चरित्र से अगर आकर्षित हो रहे हो तो सही रूप से आकर्षित हो रहे हो। The Vedic wisdom, देखिए आप तात्पर्य में कितने अच्छे समझा रहे हैं। The Vedic wisdom therefore forbids us to be attracted by false beauty, ऐसे बाहरी क्षणिक माया जैसी सुंदरता से आकर्षित होना मूर्खता है। But because we are now in darkness of ignorance, the Vedic civilization allows very restricted mixing of woman and man. They say that the woman is considered to be the fire and the man is considered to be the butter. Butter must melt in the association with fire. आदमी मक्खन के समान है और स्त्री आग के समान है। चाहे आप बोलेंगे नहीं, मंदिर के अंदर लाएंगे मक्खन और, अरे मंदिर में हो या कहीं भी हो, मक्खन मक्खन ही है और आग तो आग ही है। आप बोलेंगे नहीं, मक्खन को वैष्णव तिलक लगा के साथ में लाएंगे, अरे साथ कुछ भी नहीं, कुछ भी क्यों ना हो, मक्खन मक्खन ही है, आप फ्रिज में भी रखो वही होने वाला है। तो इस तरह से एक ही तरीका है, जितना जरूरी है उतना लाना, बस उसके बाद अलग। Very strong purport. No compromise with truth. They say that the butter must melt in the associate, and therefore they may be brought together only when it is necessary. Seva ke liye, dusre jimmedari jo apna jimmedari utne nibhane ke liye jitna zaruri utna. And shyness is a check to the unrestricted mixing. इसीलिए भगवान ने दिया है, सुखदेव गोस्वामी जब निर्वस्त्र अवस्था में, 16 साल के सुंदर नौजवान निर्वस्त्र अवस्था में जब जा रहे थे व्यासदेव से, जैसे जन्म होती वो जा रहे थे, तो कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र अवस्था में स्नान कर रही थी। जब सुखदेव गोस्वामी गए तो उन्होंने अपने आप को कुछ ढकने का कोई चेष्टा भी नहीं किया, पर जब व्यासदेव आए तो तुरंत ढकी। अरे व्यासदेव तो उनके नाना के उम्र के हैं, बूढ़े हैं वो, और तो अपने आप को ढक लिया। तो व्यासदेव ने पूछा, अरे मेरा पुत्र गया 16 साल का, एकदम दस्ट पोस्ट और एकदम निर्वस्त्र अवस्था में, अब आपने ढका नहीं अपने आप को? तो स्त्रियां कहती है कि नहीं, उसके चेहरे देखकर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर वो भावना है ही नहीं, उसके लिए पेड़ और एक स्त्री, नंगी स्त्री, दोनों बराबर है उसके लिए। तो प्रभुपाद उसके तात्पर्य में लिखते हैं स्त्री के अंदर प्रकृति ने एक ऐसा एक शक्ति डाला है कि व्यक्ति के चेहरे को देखकर पता कर सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब ये क्या है। वो एक प्रोटेक्शन, उनकी संरक्षण के लिए भगवान ने वो शक्ति दी है, तुरंत पता लगता है, इसके देखने का तरीका से पता लगता है कुछ गड़बड़ी है। तो सुखदेव गोस्वामी गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, हालांकि वो कुछ कपड़े भी नहीं पहने थे। ऑफकोर्स व्यास देव भी उसी वातावरण थे, पर एक सामाजिक तौर पर गृहस्थ का वो जिम्मेदारी लिए थे, इसीलिए ये लोग भी कपड़े पहने लो, हम लोग ने भी कपड़े पहने लो। तो इस तरह से ये प्रकृति, जैसा प्रभुपाद भी लिखते हैं, ये प्राकृतिक वरदान है स्त्रियों पर ये लज्जा। पर आजकल की जो सभ्यता है, आजकल की जो लोग हैं, उनको निकाल रहे हैं उसमें से बाहर, फैशन शो और ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ब्यूटी कॉन्टेस्ट मतलब क्या? अपना शरीर का प्रदर्शन कर, सब कपड़े को निकालकर पुरुषों के बीच चलना, प्रदर्शन करना, मिस ब्यूटी, मिस यूनिवर्स। मतलब उसके जो शेल है, प्रोटेक्टिव शेल, कछुए को उसमें से निकाल दो, बेचारा ऐसा बाहर आ जाएगा, उसको खत्म कर दो। तो कछुए का शेल, जब तक वो शेल में है कोई उसको कुछ नहीं कर सकता, अंदर ले लेगा। तो इस तरह से लज्जा है। पर आजकल की दुनिया में दुर्भाग्यवश कृष्ण भावना न होने के कारण, वैदिक संस्कृति का ज्ञान न देने के कारण, इट इज कंसिडर्ड ओल्ड फैशन। एक है ओल्ड फैशन, उधर अलग से बैठना, इधर अलग से बैठना, ऐसा ढकना, ऐसा करना, नहीं, ये दिस इज ए लॉ। तुम्हारे संरक्षण के लिए, समाज के संरक्षण के लिए, सबका संरक्षण के लिए और प्रगति के लिए। तो जब तक वैज्ञानिक तरीके से हम इसको समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं, उतारेंगे नहीं और लोगों को सिखाएंगे नहीं, तब तक कृष्ण भावना बड़े पैमाने पर प्रचार करने नहीं होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि डीप स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, एसिमिलेशन एंड डिस्कशन एंड एप्लीकेशन एंड प्रीचिंग। जब तक ये नहीं करेंगे, हमको पहले विश्वास होना चाहिए कि ये तात्पर्य के अंदर सब कुछ है, जो कुछ भी जरूरी है प्रभुपाद ने दिया हुआ है, पर सिर्फ हमको ढूंढ के निकालना है। एक खान है, खान में एक्सपर्ट आदमी निकाल सकता है। आप खान में खोदोगे ना तो एक कम बुद्धि वालों को सिर्फ मिट्टी दिखेगा, पर जो होशियार आदमी है उसमें से मिट्टी को अलग करेगा, हीरा निकालेगा। तो इस तरह से प्रभुपाद जी की पुस्तकों में ये है ये ज्ञान, पर इसको निकालना कैसा है, अध्ययन करके सूक्ष्म रूप से तरीके से डिस्कस करके निकालना जरूरी है। निकालेंगे नहीं तो ये लगेगा ये भी वैसे ही है, मिट्टी के समान फेंक देंगे हम लोग। खान से खोद रहे पर उसमें कैसा सोने और मिट्टी को अलग करना है, या हीरे या मिट्टी को अलग करना है, जानेंगे नहीं तो हीरे को मिट्टी समझ के फेंक देंगे और मिट्टी को हीरा समझ के डब्बे में डाल के रखेंगे। ये बहुत जरूरी है कि भक्तों के संग में आकर ये चर्चा करना, इन तात्पर्यों को और उतारने की कोशिश करना और प्रचार करना, और तब शत प्रतिशत कोई अलग चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भावना ऐसे बढ़ेगी जैसे गन पाउडर, रूपा लिखते हैं, अगर आग लगा दो गन पाउडर में, बारूद में अगर आग लगा दो तो बारूद कैसा फैलेगा? जब तक विस्फोट नहीं होगा तब तक वो रुकेगा ही नहीं। एक बार बारूद में आग लग गया तो इस तरह से कृष्ण भावना समझना, सबसे पहले पढ़ना, फिर अध्ययन करना, उतारना और सिखाना, ये चार चीज अगर हर एक व्यक्ति करने लगे, समाज का हर एक व्यक्ति, इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का, तो फिर जिस प्रकार बारूद में आग लगे तो कैसा फैलेगी, वैसे कृष्ण भावना न केवल कोल्हापुर, किसी स्थान में जहां उसको हम लोग उतार रहे हैं वहां फैलेगी निश्चित रूप से, कोई इसमें शंका नहीं। तो फिर समस्या ही समस्या होगी, कोई ना कोई कारण रहेगा जहां कम होते जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको रेगुलरली डिस्कस कर। प्रासाद शिखर आरूढ़ा, फिर ये सब जानने के बाद आप श्लोक पढ़ो तो श्लोक को याद करने में और श्लोक को उच्चारण करने में और उसको ध्यान करने में इतना आनंद आता है। एक्चुअली ऐसा लगता है कि हम लोग 5000 साल पहले द्वारका में खड़े हैं। आप सोचिए, आप आंख बंद करके इस श्लोक को बोलिए, प्रासाद शिखर आरूढ़ा कुरुनार्यो दिदृक्षया बभ्रशुः कुसुमैः कृष्णम् प्रेम व्रीड़ा स्मृते क्षणा। प्रासाद शिखर आरूढ़ा, आप ये सोचिए, बड़े बड़े महल हैं, महल के शिखर के ऊपर आरूढ़ कुरुनार्य कुरुवंश की जो कुल स्त्रियां हैं, कुरुनार्या दिदृक्षया, भगवान को देखने की तीव्रता है, इच्छारे चले जा रहे हैं वो, पर हम सबके सामने वहां नहीं जा सकते, इतने पुरुष लोग खड़े हैं, जन सामान्य वहां खड़ी है। तो तुरंत एक प्रासाद शिखर आरूढ़ा चढ़ गई है कुरुनार्या दिदृक्षया देखने की इच्छा से, और वहां जाने के बाद कैसा वो प्रेम को प्रकट करे इन फूलों के द्वारा। ये फूल हमारे हृदय जैसे हैं प्रभु, हम आपके चरणों में से दे रहे हैं। बड़े रिफाइंड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, वव्रशु कुसुमई ही कृष्णम, और कैसे प्रेम व्रीडा स्मिते क्षण, कितना सुंदर है श्लोक, कितना रसमय है, कितना ज्ञान इसके अंदर, और कितना ये तात्पर्य बताता है, क्या भरा है उसके अंदर। प्रासाद शिखुरारूढ़ा कुरुनार्यो दिदृक्षया वव्रशु कुसुमई ही कृष्णम प्रेम व्रीड़ा स्मृते क्षण, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, थाय गौर प्रेमानंदी। किसी का प्रश्न है तो एक प्रश्न लेंगे। यस विश्वनाथ प्रभु, उनको पूछो, वो साइंटिस्ट लोग हैं, अकेले अकेले कोई रेगिस्तान में बीच में जाके तुम सारा साइंटिफिक रिसर्च करो, तुम बोलेगा हमारे पास पैसा नहीं है ना सरकार। अच्छा तो करना अकेला, तू जाके जाके झोपड़ी में रह के तू हिमालय के ऊपर तू रिसर्च करना, तेरे को पैसा नहीं मिलेगा, तेरे को दूसरे लोग नहीं मिलेंगे जिसके साथ तू पूछ सकता है, ऐसे लोग नहीं है जो तेरे को समझा सकते हैं, पिछले बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने क्या क्या किया वो पुस्तक तेरे को नहीं दूंगा, तो गधे के समान क्या करेगा अकेला बैठ के, क्या रिसर्च करेगा, जिन लोगों ने रिसर्च ऑलरेडी कर दिया है उसके ऊपर तेरा जीवन बर्बाद होगा, तो तुम लोग साइंटिफिक फाउंडेशन क्यों बनाते हो, संघ में क्यों करते हैं हम लोग, संघ में पिछले बार हम लोगों ने चर्चा, पिछले बार हम लोगों ने चर्चा की क्लास के दौरान ही मेरे को ये साक्षात्कार हुआ। संघ का महत्व क्या है, एक संघ में आने से प्रगति ज्यादा होता है किसी चीज में। देखो पीने वाला कोई दारू पीने वाले लोग, अकेले अकेले बैठ के पिएगा तो मजा नहीं आएगा, कितना पिएगा वो, एक पिएगा बहुत हो गया, पर अगर चार लोग मिलके अच्छी अच्छी बातें करेंगे उनके उनके बुद्धि से उनको लगता अच्छा तो पता ही नहीं चलता है, अरे देखते देखते दो बॉटल खाली हो गया, उतना ही नहीं, और अगर साथ में चर्चा करते करते एक बोलता है चल तू इतना पीता है मैं और एक पीऊंगा, चल उनका कैपेसिटी बढ़ जाता है। संग में करने से रस ज्यादा बढ़ता है दारू पीने में, और रस पीने का कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। तो बोले इसी तरह से प्रभु हम यहां आते हैं भागवत अकेले अकेले पढ़ेंगे, ठीक है नींद आ गया क्योंकि समझा ही नहीं, एक शंका आया किससे पूछो, व्यासदेव ने ऑलरेडी बोल दिया है, प्रभुपाद ने बोल दिया और क्या करू। पर अगर संघ में चर्चा करते अरे ऐसा है मालूम है, अच्छा ऐसा दूसरा श्लोक है देखो इसमें ऐसा है, अरे वाह रस बढ़ते हैं। और जो एक घंटे में नहीं पढ़ पाएगा दस दस घंटे एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, एक नाम जप करने में चार माला में थक जाते हैं हम लोग, पर भक्त अगर देखते हैं और जप कर रहा है और एक थोड़ा ढीला पड़ गया दूसरे को देखता है हरे कृष्ण अरे बाप रे हरे कृष्ण कम से कम खड़ा तो होगा, मैं रस बढ़ेगा और कैपेसिटी बढ़ेगी। तो हम रस का आस्वादन करना चाहते हैं, संकीर्तन अकेले अकेले संकीर्तन क्या करेगा तुम, संकीर्तन संघ में आना है तो कुछ तो एक नियम होना चाहिए। मैं बोलूंगा संकीर्तन, मैं रंकाड़ा के पास आऊंगा, मैं मन में सोचूंगा, और दूसरा बोलेगा नहीं मैं नीरज में जाके करूंगा, अरे संघ में आके चर्चा करना चाहिए, कहाँ आएंगे हम लोग? चलो एक जगह तो निर्णय करना पड़ेगा, तुम कैसे आओगे, कब आओगे? एक रात को 8 बजे आएगा, एक सुबह 8 बजे आएगा, थोड़ी होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट? कम्युनिकेशन, सो दैट एवरीवन कैन डू थिंग्स टुगेदर। अच्छा, संकीर्तन में होना है तो कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अच्छा ठीक है, और प्रसाद का कुछ इंतजाम है? मैं थोड़ा लाऊंगा, ठीक है, हो गया। नहीं तो सोचे, सब अपने सोचने लगे, बाय चांस आना चाहिए प्रसाद, ऐसा थोड़ी होता है। ऑर्गेनाइजेशन मींस यू हैव टू थिंक। प्रभुपाद ने एक बार बहुत सुंदर कहा, ऑर्गेनाइजेशन द ओनली पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज हाउ टू इंप्रूव हियरिंग एंड चैंटिंग, दैट्स ऑल। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पोजिशन, हमको ये बनने का, वो बनने का, वो नहीं। हमारा उद्देश्य ये है, मैनेजमेंट इसलिए ताकि हर एक व्यक्ति का श्रवण कीर्तन अच्छे तरह से चले, टाइम टू टाइम प्रसाद सबको अच्छे मिले, कीर्तन अच्छा हो। कोई भी करताल बजा रहा है जिसको ट्रेनिंग नहीं, नहीं, ऐसे लोग बजाएंगे ऐसे, फिर सब लोग ऐसे खड़े होंगे जैसा कल हरिनाम हुआ। ऑर्गेनाइज नहीं होगा, कोई भी किधर भी चलता रहेगा तो असर नहीं पड़ेगा। सो ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट टू डू इट इन अ मोर इफेक्टिव वे, सो दैट वी कैन प्रीच टू अ लार्जर पॉपुलेशन इन एन इफेक्टिव वे। नहीं तो संस्था की जरूरत नहीं है, हर एक व्यक्ति को अपना प्लेन उड़ाना है। भगवत धाम जाते वक्त ऐसा नहीं साथ में हाथ पकड़ के जाएंगे, ऐसा नहीं। हर एक व्यक्ति को अपने शक्ति के बल पर उड़ना पड़ेगा, वो है, पर फिर भी साथ में एक दूसरे को हम प्रोत्साहन कर सकते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एन इसेंशियल थिंग, इट्स नॉट नेसेसरी, बट एट द सेम टाइम इन कलियुगा विदाउट ऑर्गेनाइजिंग एनीथिंग वी कांट सर्वाइव। हम लोग खुद ही कृष्ण भावना भावित नहीं रह सकते अगर संस्था में नहीं आएंगे, और हम इसका रस का आस्वादन करना चाहते हैं, हमारी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और देना चाहते हैं लोगों को। अगर एक संस्था नहीं रहेगा, एक जगह नहीं रहेगा, कितने आप 200 लोगों को अपने घर भर में बुलाएंगे? अभी पाश्चात्य देश में नहीं, अरेबियन कंट्रीज में, मिडल ईस्ट में बेचारे लोगों को पब्लिक में दे कांट डेमोन्स्ट्रेट, वहां कितना तकलीफ हो रहा है। छोटे छोटे चार चार लोग आते हैं साथ में, चार चार लोग आते हैं, हो रहा है फिर भी, पर एक साथ अगर 1000 लोग आए तो कितना स्फूर्ति मिलता है हमको देख के, सिर्फ आह इतने लोग हैं और साथ में हरिनाम करें, उत्साह मिलता है कि नहीं, और विश्वास बढ़ता है, इतने लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उतना प्रभावशाली रूप से प्रचार नहीं कर सकते उधर, क्योंकि सरकार का बहुत सारे नियम रिस्ट्रिक्शन, पर यहां सब कुछ है, वाई नॉट। अनुकूल से संकल्प, हमको ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लेना देना, संस्था अनुकूल चीजों को हम स्वीकार करते हैं। अगर साथ में आना अनुकूल है स्वीकार करेंगे, उसके लिए मैनेजमेंट करना जरूरी है स्वीकार करेंगे, प्रतिकूल जैसे वर्जन, जो प्रतिकूल है उसको नहीं करेंगे। तो भक्ति में जो अनुकूल है, अगर साथ में आना अनुकूल है आएंगे, अगर उसके लिए जगह बनाना जरूरी है बनाएंगे। हमको जगह से आसक्ति नहीं है, हमको कृष्ण से आसक्ति है, भक्ति से आसक्ति है, प्रचार से आसक्ति है। तो इन चीजों के लिए जो भी अनुकूल है हम उसको स्वीकार करेंगे, और जो भी प्रतिकूल है, चाहे जितना भी मूल्यवान चीज हो, अगर प्रतिकूल है नहीं चाहिए हमको। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, इतना बड़ा बिल्डिंग हो गया और बिल्डिंग के कारण झगड़ रहे, तो बड़े बिल्डिंग के खत्म, एक एक मार्बल को ले बेच डालो और पुस्तक बेचवा दो, क्योंकि जिस उद्देश्य से बनाया है वो अगर नहीं हो रहा है तो क्या फायदा। हमारा एक ही उद्देश्य, कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, भक्ति में हम कैसे प्रगति स्थित रहे और प्रगति करें, और लोगों को, कितने लोगों को हम कृष्ण भावना में ला सके, बस। और उसके लिए जो भी अनुकूल है, अगर मैनेजमेंट चाहिए तो करेंगे, एक बिल्डिंग चाहिए तो बिल्डिंग बनाएंगे, पैसा चाहिए तो पैसा लेंगे हम लोग, लेंगे। प्रतिकूल ये सब अर्जन, अगर वो प्रतिकूल है तो क्या करना है, हमको नहीं लेना। हीरा में कोई देगा हमको नहीं चाहिए, जैसे हनुमान जी को हीरा उन्होंने दिया, प्रभु रामचंद्र बहुत खुश हुए, सीता माता का उन्होंने हीरा दिया, हनुमान जी ने तोड़ के दो टुकड़ा करके ऐसा ढूंढ, बोले क्या क्रिया तूने, बोला देख रहा हूं उसमें राम है कि नहीं, राम नहीं है तो मेरे को कुछ लेना देना, अगर राम है तो पत्थर के अंदर, वो पत्थर भी है ना, उसको शालिग्राम जैसा बांध के रखूंगा मैं इधर, पर हीरा भी हो अगर उसमें राम नहीं हो तो मेरे को कुछ लेना नहीं, वो ये पत्थर के बराबर है मेरे, वो हीरा भी बिना राम के बिना पत्थर के बराबर है, और वो पत्थर प्रभु रामचंद्र के साथ हीरे के समान, तो ये दृष्टिकोण, तो वी आर इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वी वॉन्ट टू ऑर्गेनाइजली ब्रिंग पीपल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड ऑल साइमल्टेनियसली एडवांस एंड इट इज अनुकूल. वाई यू पीपल हैव ऑर्गेनाइजेशन, सरकार क्यों बनाते हो? सरकार मत बनाओ ना, सब लोग अपना अपना गाड़ी जहां भी चलाएंगे किधर भी चलाएंगे, जिसको जिसको जब लगा जहां भी कंस्ट्रक्शन करेगा करने दो ना. वाई डू यू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग? वाई डू यू ऑर्गेनाइज एनीथिंग एट ऑल? घर में भी कोई भी किधर भी जाके रहने दो, कोई भी कहीं भी सोने दो, कोई भी कुछ भी पकाने दो. नहीं नहीं, माता जी पकाएगी, प्रभु जी खवा के लाएंगे, बच्चे लोग स्कूल जाएंगे, ये टाइम पे हम लोग साथ में बैठ के खाएंगे. क्यों रूल बनाते हो? रूल बनाने का उद्देश्य सिंपल, जस्ट सो दैट एवरीथिंग कैन मूव स्मूथली एंड नाइसली एंड द पर्पज बी अचीव. दैट्स ऑल. डज दैट मेक सेंस? यू आर सैटिस्फाइड? हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. गौर प्रमाण
ट्रान्सलेशन केलेलं असं माहिती आहे. इव्हन कधी कधी मी वाचत असतो ना.